सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात जो है सिर्फ मेरी तरफ से है, तो अपनी फीलिंग्स का बोझ मैं नित्या पर कैसे डाल सकता हूँ? वैसे भी वो मेरी लाइफ से जा चुकी है, अब इस बारे में कोई भी बात करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए अब तू भी इस बारे को यही खत्म कर दे, इन सबसे कुछ हासिल नहीं होगा। मानव अपना फैसला सुना चुका था, जिसमें कोई बदलाव लाना अभी तो पॉसिबल नहीं था। अपनी जगह वो सही भी था, इसलिए इनाया भी कुछ नहीं बोल पाई, बस परेशान सी उसे देखती रही। कुछ देर के बाद उसने सवाल किया, तूने मुझे पहले कुछ क्यों नहीं बताया? क्या नहीं बताया? मानव चौंकिया, हैरानगी से उसे देखा। इनाया आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरने लगी। मानव पल में समझ गया कि वो किस बारे में बात कर रही है, और चेहरा एक बार फिर भावहीन हो गया। बताने लायक कुछ था ही नहीं। इनाया की भौहें सिकुड़कर आपस में जुड़ गईं। वो गुस्से से भड़की, तुझे एक अनजान लड़की से प्यार हो गया तो उसके साथ रहने लगा, वो तुझे छोड़कर चली गई, और इस सब में तुझे कुछ भी बताने लायक नहीं लगा? हाँ, नहीं लगा। जितनी ज्यादा इनाया भड़की हुई थी, मानव उतना ही शांत नजर आया। क्या बताता तुझे कि मुझे एक लड़की सड़क पर मिली, कुछ गुंडे उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे, इसलिए मैं उसकी सेफ्टी का ख्याल करते हुए उसे अपने साथ घर ले आया। वो अपने घर जाने को कुछ बताने को तैयार नहीं थी, इसलिए मुझे मजबूरन उसे अपने साथ रखना पड़ा। ये बताता कि ये जानते हुए कि वो मुझसे बातें छुपा रही है, मेरे लिए बिल्कुल अनजान है, मुझे उससे प्यार हो गया। या ये बताता कि उसके डैड आए और उसे अपने साथ वापस ले गए, मैं एक बार फिर अकेला रह गया, उसे रोक तक नहीं सका क्योंकि मुझे ऐसा करने का कोई हक नहीं था। अपनी वन साइडेड नाकामयाब मोहब्बत की कहानी सुनाता तुझे, और क्या हो जाता इससे? तेरी जिंदगी में क्या पहले ही कम प्रॉब्लम्स है जो तुझे ये सब बताकर और परेशान करता? वैसे भी जो था अब खत्म हो चुका है, मैंने भी इस हकीकत को एक्सेप्ट कर लिया है, अब सब ठीक है। वो जहाँ से आई थी वहाँ वापस चली गई, मैं भी अब अपने सपने पर ध्यान दूंगा, कुछ टाइम बाद आई की पसंद की लड़की से शादी कर लूंगा, और बस फिर लाइफ सेट है। जितनी आसानी से तूने ये सब कह दिया, क्या करना भी उतना ही आसान है? उसे भुलाकर किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएगा, और सबसे बड़ी बात, खुश रह पाएगा उसके बिना? वक्त बड़े से बड़ा ज़ख्म भर देता है, किसी के जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती, वो आगे बढ़ती रहती है। मैं भी वक्त के साथ उसे भूल जाऊँगा, खुश भी रह लूँगा, तू मेरी चिंता मत कर, अपनी लाइफ पर ध्यान दे। इनाया बस उसे देखती ही रह गई। कितनी कोशिश की उसने समझाने की, लेकिन मानव कुछ सुनने समझने को तैयार ही नहीं। वो डिसीजन ले चुका था और उसी पर टिका था। अपने सारे एहसासों को उसने दिल की गहराइयों में कहीं दफन कर लिया था। मानव मुस्कुराया, जैसे खुद के ठीक और खुश होने का एहसास दिला रहा था, और इनाया ने पल में इमेजिन कर लिया कि अगर कायरा उससे दूर हो गया तो उसके दिल पर क्या बीतेगी, वो कैसे रहेगी उसके बिना। और तब उसे एहसास हुआ कि मानव कितना दर्द खुद में समेटे मुस्कुरा रहा था। वो आगे बढ़कर उसके गले से लग गई और मन ही मन बोली, मैं जानती हूँ तू तकलीफ में है, लेकिन दिखाएगा नहीं, हमेशा जैसे सब अपने अंदर ही छुपा लेगा। ये भी जानती हूँ कि जो तूने कहा वो करना बेहद मुश्किल है, मैं तो कायरव के बिना अपनी लाइफ इमेजिन करने से भी डरती हूँ। अपने दिल और ज़िंदगी में उसकी जगह किसी और को देना, ऐसा तो सोच भी नहीं करती। वो मेरे होठों पर बिखरी मुस्कान है, अगर वो मुझसे दूर हो गया तो शायद जैसे तैसे मैं तन्हा ज़िंदगी तो काट लूँगी, लेकिन कभी खुश नहीं रह पाऊँगी। तू भी तो उससे प्यार करने लगा था, तू भी ऐसा ही फील कर रहा होगा। आई विश नित्या तेरी लाइफ में वापस आ जाए, और इस बार हमेशा के लिए तुझे तेरी मोहब्बत मिल जाए, और तू उसके साथ खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताए। इनाया ने आंखें बंद की और मन ही मन बप्पा से प्रार्थना करने लगी। ऊपर से इनाया के चिल्लाने की आवाज़ नीचे तक जा रही थी, जिससे नीचे बैठे दोनों लोग कुछ परेशान नजर आने लगे थे। कायरव बैठा तो अनीता जी के साथ था, लेकिन नज़र उसकी बार बार सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। लंबे इंतजार के बाद उसे इनाया सीढ़ियों से उतरती नजर आई, उसके साथ मानव भी था, और दोनों किसी बात पर मुस्कुरा रहे थे। लीजिए काकी, मैं आपके बेटे को खींच कर ले आई, इनाया ने मुस्कुराते हुए अनीता जी से कहा, और मानव को कायरव के पास बिठाकर खुद अनीता जी के पास बैठ गई। नॉर्मल हाय हेलो के बाद मानव और कायरव जी कैफे से जुड़ी बातें शुरू हो गई। कुछ देर इनाया ने दिलचस्पी लेकर सुना, फिर बोर होने लगी तो अनीता जी के साथ किचन में चली गई। काकी, आपने इतना सब बना लिया? इनाया ने जब किचन में आकर खाना देखा तो उसकी आंखें निकलकर बाहर आने को हो गईं। शादी के बाद तुम जामाई जी के साथ पहली बार घर आई हो, ये उनका ससुराल हुआ और तुम्हारा मायका, उनकी खातिरदारी में कोई कमी कैसे छोड़ सकती हूँ मैं? अनीता जी ने खाना सर्विंग बोल में निकालते मसरूफियत से जवाब दिया। ओ काकी, आपने इतनी मेहनत बेकार में कर दी, वो तो इतना खाते भी नहीं हैं, डाइट फूड लेते हैं, ये ज़्यादा मसाले और तेल वाली चीज़ों को देखकर ही नाक से कोड़ने लगते हैं, कभी खा ले तो अगले दिन जिम में बदल टाइम बर्बाद करते हैं। इनाया ने सोचकर बुरा सा मुंह बनाया, और अनीता जी के लिए उसे दिल से बुरा लगा था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इतना सब बनाने में उन्हें कितनी मेहनत और कितना टाइम लगा होगा। थोड़ा थोड़ा सब चख लेंगे, और तुम चिंता मत करो, जैसा तुमने बताया था वैसे ही सब खाना तैयार किया है, तेल मसाला सब हिसाब से डाला है। इनाया अब कुछ नहीं बोली, उसे अब कायरव की चिंता होने लगी थी, यकीनन वो यहाँ मना नहीं कर पाएगा, और ये सब खाने के बाद वो कितनी देर तक जिम में पसीने बहाता रहेगा, सोचकर ही उसे चक्कर आने लगे। इनाया ने अनीता जी के साथ मिलकर सब खाना टेबल पर सजा दिया, फिर मानव को कायरव को लेकर आने बोल दिया।
कुछ देर बाद कायरव डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठा था। उसके सामने इनाया बैठी थी अनीता जी के साथ और सामने थाली में खाना रखा था। पूरी मराठी ट्रेडिशन स्टाइल में थाली सजाकर उसके सामने रख दिया गया था। बेचारा राजस्थानी था, सामने रखी ज्यादातर चीजों को खाना तो दूर, उसने कभी उनका नाम तक नहीं सुना था, जानता तक नहीं था कि वो क्या है। ऊपर से सामने इतना सब रखा था, देखकर ही कायरव का सर घूमने लगा। उसने आंखें बड़ी बड़ी करके सामने रखे खाने को देखा, फिर परेशान निगाहें नाया की तरफ उठाई। उसने बेचारगी से सर हिला दिया और आंखों से इशारा किया, काकी ने बहुत प्यार से हाथ तुम्हारे लिए ये सब बनाया है, सब थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लो। इतना सारा? कायरव इशारों में आगे कुछ बोलता, उससे पहले ही अनीता जी की आवाज ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। आप कुछ खा क्यों नहीं रहे, शुरू कीजिए। हाँ, वो बस खा ही रहा था। कायरव ने हड़बड़ाते हुए नाया पर से नजरें हटाई, अनीता जी को देखा, फिर नजरें खाने पर टिका दी। उसने सब थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया और हैरान रह गया, सब उसके अकॉर्डिंग ही बना था, बिना ज्यादा तेल और मसाले का, तीखी भी बैलेंस था, यहाँ तक कि मीठे में भी दूध या उससे जुड़ी कोई चीज नहीं थी। कायरव की हैरानी भरी नजरें नाया की तरफ उठी, जो दोनों हाथ टेबल पर रखे हथेलियों पर अपना चेहरा टिकाई टकटकी लगाए उसे देख रही थी। कैसा लगा, पसंद आया आपको? वैसे काकी बहुत अच्छा खाना बनाती है, मैं तो इनकी फैन हूँ, इन्हीं से मैंने खाना बनाना सीखा है, इनाया चहकते हुए बोली और उम्मीद भरी नजरों से उसे देखने लगी। कायरव को समझते देर नहीं लगी कि जरूर इनाया ने ही उन्हें बताया होगा। उसके होठ के किनारे हल्के से मुड़ गए, वो खुद को तारीफ करने से रोक न सका। सब बहुत अच्छा बना है, लेकिन आपको इतना सब बनाने की जरूरत नहीं थी, मैं तो ये सब खा भी नहीं पाऊंगा, आपने बेवजह ही खुद को परेशान किया।
आपको पसंद आया, बस मेरी मेहनत सफल हो गई, आप आराम से पेट भरकर खाना खाइए, सब आपके हिसाब से ही बनाया है। अनीता जी सौम्यता से मुस्कराई। कायरव ने गौर से उन्हें देखा, सादी साड़ी में लिपटी उसे ये लेडी खास सी लगी। उनके चेहरे पर सौम्य मुस्कान, उनके व्यवहार में झलकता प्यार और अपनापन, उनके स्पर्श में ममता का एहसास, ये सब बातें उन्हें आम से खास बना रही थीं। यकीनन इतना सब बनाने में उन्हें बहुत टाइम लगा होगा और मेहनत भी, लेकिन उनके माथे पर शिकन की एक रेखा तक नहीं थी। हल्की फुल्की बातों और हंसी मजाक के बीच सबने लंच किया। इनाया के आने से सच में घर में रौनक आ गई थी। पूरे वक्त उसका मुंह चलता रहा, जिसने सबका अच्छा खासा एंटरटेनमेंट कर दिया था। दोपहर से शाम कब हुई किसी को पता ही नहीं चला। अनीता जी तो चाहती थी कि दोनों आज यहीं रुक जाएं, लेकिन कायरव को जाना था। उसने इनाया को कहा भी कि वो चाहे तो रुक सकती है, वो कल उसे ले जाएगा, लेकिन इनाया ने मना कर दिया कि फिर कभी आएगी दोबारा, आज जाना होगा। अनीता जी ने भी ज्यादा दबाव डालना ठीक नहीं समझा। उन्होंने पहले ही कायरव और इनाया के लिए कपड़े खरीदे हुए थे, जो कायरव ने उनका दिल रखते हुए पहन लिया, और अब वो मानव के साथ लिविंग रूम में बैठा था और इनाया अनीता जी के साथ उनके रूम में थी। कुछ देर बाद इनाया ने अनीता जी के साथ वहां कदम रखा। आहट सुनकर कायरव की निगाहें अनायास ही उस तरफ उठ गईं, और जब नजर इनाया पर पड़ी तो जैसे दिल धड़कना ही भूल गया।